मन्वते सचि पुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्य ब्रजपरिपरिमाते गोष्ठवाते राधाकुण्डं गिरिवर्महोराधिकामातवासरं प्राप्तौ यस्य प्रतिपुषिता श्रीगुरुं तं नतोऽस्तु। बसंत पंचमी रखिए, आज बसंत पंचमी ही है क्योंकि अभी कल भी थी है ना, कल ही तो बसंत पंचमी है, परसों
कल पच्चीस कल से शुरू हुई
है, पच्चीस ऋतु भी अब बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है। ये बसंत ऋतु सभी अर्थों में, और इसकी मैया को देखो थोड़ा सा बिचारा है, देखो तो ये बसंत ऋतु कैसी है। और बसंत जिसका प्रारंभ हुआ विष्णु प्रिया जी का
आविर्भाव,
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का
तिरोभाव,
रघुनाथ दास गोस्वामी जी का
आविर्भाव,
ये आविर्भाव उसी दिन में ये लोग प्रकट होते हैं। और भी इसी कुछ दिनों में ही नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव होगा,
कल अद्वैत प्रभु का आविर्भाव है,
कल अद्वैताचार्य जी आविर्भूत होंगे, और फिर नित्यानंद प्रभु जी कुछ नहीं सका, और
इसके बाद से शुक्ल पक्ष शुरू हो,
और इसके बाद में फिर देखेंगे कि हमारे गुरु जी आएंगे, गुरु जी का आविर्भाव होगा, और फिर उनके गुरु जी
एक दिन बाद
प्रभुपाद जी का आविर्भाव
बसंत में ही आ रहा
है, और फिर और तो देखो जो सबके सम्राट सब श्री चैतन्य महाप्रभु जी पहले अपने परिक्रम को आविर्भूत कराया, और अंत में बसंत ऋतु जब समाप्त होने की होगी तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समस्त ईश्वरों को अपने साथ लेकर के परिक्रम को श्रीमती राधिका इत्यादि सबको लेकर के वो पधारे। अच्छे क्यों केवल अभी के लिए ही नहीं, मधुर निशाया जब रूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रार्थना कर थोड़ा समय आगे आगे अब आज आए तो सभी लोग बैठ गए वही महीना है जब बसंत रास इसी महीने के अंदर में बासंती रास किसको कहते हैं, बासंती और इधर वृंदावन में भी शारदीय रास है, और इस समय में भी बासंती रास गोवर्धन है, शायद यही वो महीना है जिसमें दो महीने फाल्गुन और चैत्र के बलदेव प्रभु रहते ही आए थे। कब आए थे?
सांत्वना देने के लिए ब्रजवासियों को,
गोपियों को बिरह से सांत्वना देने के लिए बलदेव प्रभु जी यहाँ पर आए थे, और बलदेव जी का विलास वहाँ राम घाट पर वहाँ पर हुआ था, यहाँ पर उन्होंने अपने हल के नोक से जमुना जी को खैन से लिया था, उसका प्रमाण अभी भी स्थान पर जाने से मिलता है। एक तरह से देखते हैं कि पहले से ही ये मधुमान, इसलिए इसका नाम हुआ मधु, मधु मास, मधु माने प्रेम, गोपियों का प्रेम मधुसूदन, इसीलिए मधुसूदन मधुसूदति आस्वादयति इति मधुसूदन, गोपियों के प्रेम के मधु का आस्वादन करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी वेदों में भी मधु मृतायति इत्यादि का वर्णन है।
मधुशरण सिंह
मधु माने होता है प्रेम ही एक साथ एकत्रित होकर ब्रज के रूप में यहाँ पर अपनी प्रकट की जाने उदित हुआ है। इसी प्रेम के दो पहलू एक राधा जी और एक कृष्ण है। सर्दी अलास में मैंने वो प्रेम इस वृंदावन में बंसी भट्ट में शादी और आशीर्वाद, इसमें सब तरह की गोपियों ने भाग लिया। ये गोपियाँ वेद की ऋचाएँ और मंत्र हैं, कोटि कोटि वर्ष तक साधना करके तब ये राजा जी के चरणों की कृपा पाने के लिए इस रूप में आई हैं। साधारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर राय रामानंद से मिले, अब दोनों में संलाप हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी समस्त गोपियों में राधा जी का उत्कर्ष दिखलाने के लिए उनसे कुछ प्रश्न किए और उन्होंने उसका वर्णन किया। समस्त प्रेमों में दास प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। अजय हाँ ठीक है, आगे चलिए। उन्होंने कहा इससे भी अधिक सख्त प्रेम ये और अधिक श्रेष्ठ है। हनुमान जी का दास्य इसकी अपेक्षा पांडवों का दास्य प्लस सख्त और उसमें वात्सल्य भी किसी किसका, ये उससे बहुत श्रेष्ठ। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज भीम का ये अर्जुन से हनुमान जी से बहुत श्रेष्ठ। और इससे भी यशोदा जी का हिंदू बाबा वात्सल्य रस ये बहुत श्रेष्ठ है, इसमें ममता अधिक है। कृष्ण में ममता होना ही ये भजन कृष्ण मेरे हैं तब अपना सर्वस्व उनके चरणों में दे देते हैं। प्रेम ऐसा ही होता है, अपने आराध्य देव के चरणों में सर्वस्व सौंपना होता है, कुछ नहीं मानना, ये भक्ति का स्वरूप, तब जाकर के उसको कहीं कुछ मिलता है। किंतु इस प्रेम में भी कुछ कमियां हैं, वात्सल्य में नहीं, इनसे भी गोपियों का जो प्रेम है ये सबसे श्रेष्ठ है। राय रामानंद जी का है। और कुछ आगे बढ़िए तो उन्होंने कहा राधा जी के प्रेम की तुलना कोई नहीं है, यही अंतिम बिंदु पर अंतिम सीमा है प्रेम की। कैसे कैसे शास्त्र से प्रमाण करो, तो उन्होंने ये बतलाया वृंदावन में बंसीभट्ट में रास हो रहा था और उसमें सब गोपियों को सौभाग्य मत हुआ, अपने सौभाग्य का मत, कृष्ण मुझको सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उस समय राधा जी को मन हुआ उन्होंने देखा और इस समय में राधा जी रास को चली गई छोड़कर और कृष्ण उनको ढूंढने लगे। बिना प्रेम के कृष्ण नहीं रह सकते, भगवत्ता की चरम सीमा में यहाँ पर कृष्ण रसो वैसा है, रसों के अभाव समुद्र हैं, अतः प्रेम के समुद्र हैं, मूर्तमान विग्रह कृष्ण हैं, वो प्रेम के बिना कैसे रह सकते हैं। राधा जी प्रेम हैं, कृष्ण स्वरूप हैं, उनमें से प्रेम निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचा, इसलिए कृष्ण उनको खोजने के लिए ढूंढने के लिए चले, सब गोपियों को छोड़ दिया। जिसमें प्रेम की सबसे अधिकता है, जब वही नहीं रही तो किस लिए राज, किस लिए आनंद ही क्या है। कृष्ण भी उनको छोड़कर के चले गए सबको। राय रामानंद जी ने कहा यही इसका उदाहरण है, भागवत में इसका वर्णन है। उन्होंने कहा ये तो छोड़ दो, इसे ये प्रमाणित नहीं होता कि राधा जी सबसे उनकी प्रेयसी थी, इसे प्रमाणित नहीं होता। लुक छिप करके गए, हो सकता है कि इसे भी यदि किसी को प्यार करते हैं उसका डर के मारे छिप करके गए, यदि सबके सामने साक्षात रूप में उनको छोड़ करके चले गए राजा जी के लिए, तब हम मान सकते। तब उन्होंने गीत गोविंद का वह पद पढ़ा, संसार वासना
कंसारी रूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा राधा माता हृदय तत्व
कि बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु में गोवर्धन की तराई में रास हो रहा था और उसमें साक्षात रूप में सबके सामने छोड़ करके और राधा जी के प्रेम के लिए उनके पीछे पीछे चले और बोले स्मर गरल खंडनम व सिर से मंडनम देही पद पावन। राधा जी का मान छोड़ाने लगे, जैसे आप प्रसन्न हो गए, मैं कान पकड़ करके कह रहा हूँ आपके चरणों में अपने सिर दे करके, फिर से ऐसा नहीं करूँगा, गलती कृष्ण की नहीं है तो भी ऐसा करें। इस प्रकार से ये बसंत पंचमी का स्पष्ट रूप से राधा जी की सर्वश्रेष्ठता का यहाँ पर प्रतिपादन किया। चैतन्य महाप्रभु जी बोले, जैसे इसके बाद में और कुछ है तो कहो, और जहाँ कहने लगे उनके मुख को, इसका सुनने का अधिकारी कोई नहीं है बस, और नहीं तो हमारा स्वरूप तो मैं कृष्ण ही हूँ, मैं कृष्ण ही जैसा हूँ, बस उन्होंने बंद कर दिया। तो ये इसी ऋतु में ही हुआ था, इसी ऋतु में ही राधा कुंड में होली हुई थी, होली बसंत है ना, बसंत ऋतु में होली का दिन होता है, इसी ऋतु में हुआ था। यह ऋतु ऐसी है, प्रत्येक जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, जड़ में तो नहीं कि जितने भी चेतन पदार्थ, पेड़ पौधे गुल लता मनुष्य की पशु पशु इत्यादि से नवजीवन का संचार होने लगता है, यहाँ ये बसंत ऋतु आई इसके पहले दिन से ही, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बसंत ऋतु की महिमा है। न जाने क्यों कोयल अपने आप कुहकने लगती है, ये ऐसी ही देखेंगे, जब पतझड़ होने लगता है, पुराने पत्तों को पेड़ छोड़ने लगते हैं और नए पत्ते पत्ते कोमल कोमल उसमें संचरित होंगे। हमने देखा जहाँ मैं टहलने जाता हूँ, पौधों को पेड़ों को एकदम पूरा काट दिया और 5-7 दिन के बाद में देखा कि सारी हरी कोमल कोमल लाल लाल पत्तियों से वो पूरा अब भर रहा है, कुछ दिनों के बाद में और उसमें पत्ती कोमल चारों तरफ में से बाहर देखते हैं कि ये नवजीवन का संचार करने वाला है बसंत ऋतु। कुछ एनर्जियां इसमें ऐसी आती हैं, ऊर्जा आता है जो कि कुछ करने की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, उमंग कुछ अपने आप आती है। होली मैंने क्या उमंग है, जो अपने भीतरी आनंद को हम प्रकाश करते हैं, एक दूसरे से गले से मिल करके और प्रेम के संगीत गा करके परस्पर मिलते हैं, अपने अनुराग को एक दूसरे के प्रति हम व्यक्त करते हैं। तो ये अनुराग का व्यक्त करना सबसे अधिक अपने आराध्य से परम आराध्य कम कृष्ण है उनके प्रति, यदि हम अपने इस अनुराग को व्यक्त कर सकें, इसीलिए हो बसंत ऋतु। इस ऊर्जा को इस शक्ति को हम कृष्ण के भजन में लगाए, इसलिए जितने भी हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े महाजन लोग, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु इसी से, इसलिए हम इस महीने को इस रूप में लें, हमारे अंदर में एक नव जीवन का संचार हो रहा है। शास्त्रों में देखते हैं जैसे जितनी भी प्रियाएं हैं कृष्ण को से मिलने के लिए अत्यंत व्यग्र हो जाती हैं, प्रकृति एकदम सजधज जाती है पैशवंती रंग में। अभी ठाकुर जी वृंदावन में जितने भी देखेंगे सब बसंती रंग में रंगे हुए होंगे, सब बसंती रंग। ये बसंती रंग क्या है? बसंती रंग क्या है? राधा जी का श्री अंग और उन्हीं की अभिव्यक्ति के लिए कृष्ण इसको धारण करने के लिए जो पहनते हैं पीतांबर कृष्ण। ठाकुर जी रामचंद्र जी का भी देखो, इनका भी देखो, ये पीतांबर पहनते हैं। ये राधा जी हलादनी शक्ति हैं, इन्हीं के कुछ भाव को व्यक्त करता है वो, इसलिए कृष्ण उस पर हैं तो श्याम किंतु उसको धारण करते हैं। जैसे हरे मेघ में श्यामल मेघ में बिजली होती है, ठीक उसी तरह से कृष्ण उस रूप को धारण करते हैं। यही ऊर्जा शक्ति का मूल स्रोत है। भागवत के प्रथम श्लोक में इसको बतलाया गया है, तेजो बाल गदम यत्र विनिमयो निसर्गो अमृषा धामना स्वैन निरस्त कोकम सत्यम परम। हम उसी का ध्यान करते हैं, वो राधा जी है। गायत्री के मंत्र में भी, काम गायत्री में भी प्राचल वो हमारे हृदय में उदित हो वो शक्ति, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी राधा जी की तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, तब तक हम भक्ति में परिपक्व नहीं हो सकते। जितने प्रकार के कोटि कोटि भाव हैं ये सब राधा जी के ही एक माने भाग है, अंश और कला है। हमारे अंदर में भी जो कुछ प्रीति परस्पर की भी है वो सब इन्हीं की है। इसलिए इस महीने में हम लोग श्रीमती जी की आराधना करेंगे कि वे हम पर कृपा करें, जिससे हम भी उसी प्रकार से अपने हृदय में उनकी एक छोटी सी प्रेम की कला अपने हृदय में लेकर और भजन में उन्नत हो सके। रागान का भजन का यही रहस्य है, राग का अनुगत होकर के, यही तो रागान का है। किसके अनुगत होकर के? जिनके अंदर में राग है स्वाभाविक रूप में, वो कौन है? चार प्रकार के ब्रज के जो भक्त हैं, ये सब राधा जी के ही अंश और कला विकास इत्यादि हैं। इसलिए गुरु जी भी उन्हीं की कृपा के, कहा जाता है कि एक बलदेव प्रभु जी के अंश से और एक श्रीमती राधिका जी, गुरु जी में दोनों चीजें हैं। तो अनुराग उस राग के अनुत होकर के, किस राग के? यशोदा जी में जो वात्सल्य रस है ये कहाँ से आया? यद्यपि स्वभाव के रूप में उनमें है किंतु ये राधा जी का अंश है ना। राधा जी में सभी कुछ है, उन्हें वात्सल्य सख्य दास्य और शांति इत्यादि सभी कुछ उनमें है, सब कुछ उन्हीं का ही है। उन्होंने वो चीज यशोदा जी में नंद बाबा में दे दिया कौशल्या। और यदि प्रेम कृष्ण को करना है यदि, तो इस तरह से करो जैसे माँ यशोदा जी और नंद बाबा सभी लोग अपने संतान की को प्यार करते हैं, किंतु ऐसा नहीं प्यार करते जैसे यशोदा जी और नंद जी करते हैं। सभी सखा लोग परस्पर परस्पर प्रीति रखते हैं, किंतु श्रीराम सुगल मधुमंगल अर्जुन लवंग कोकिल ये जैसे कृष्ण को प्यार करते हैं उनके बिना रह नहीं सकते, ऐसे हम लोगों में नहीं है। जिस प्रकार से हनुमान आदि रक्त पित्त या ब्रज के रहने वाले सेवक के जैसे कृष्ण को की सेवा करते हैं, हम सब लोग करते तो हैं सेवा, किंतु ऐसा नहीं। इसलिए राग का अनुगत होकर मैंने श्रीमती राधिका जी के अंदर में जो अनुराग है उसके अनुगत अनुराग, ये रागानुगा का ये तात्पर्य है। सब में है किंतु विकास नहीं है। हम लोग इसको इस बसंत ऋतु में इसे प्रकाश कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो आएगी किसी न किसी रूप में आएगी, उस एनर्जी को भगवान की सेवा में हम लोग लगाए, अनुरागी भक्तों के आश्रय में अनुगत्य में हम लोग भजन करें। बिना भजन के ये गांठ बांध रखो, बिना भगवत भजन के कभी भी शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता। क्या लाख जन्म भटको, लाख पर भटको, किंतु अंत में घूम करके सुख और शांति के लिए उसी जगह आना पड़ेगा। आज भजन करो ठीक है, अनंत कोटि वर्ष तक माया का दंड त्रिपा तिता भोग करके जबरदस्ती ऊंच जैसे नाक में लकेल पहना कर माया घुमा फिरा करके ले आएगी। तो बुद्धिमान पुरुष सोचता है कि हम अपने लाख जन्मों को क्यों गंवाएं, क्यों नहीं अभी अपने को सुधार करके भगवान का भजन में लग जाए। इसलिए बुद्धिमान जो धी धी मैंने जिनको बुद्धि है, कौन से जैसे जो सुमेधा है, सुमेधा मैंने जिनकी मेधा अत्यंत तीक्ष्ण है बुद्धि, वो लोग कीर्तन यज्ञ में महाप्रभु जी का भजन करते हैं। और भागवत में भी कहा गया कि अनुवर्णयेत पत श्रोत अथ वर्णयेत जब भक्ति परां भक्ति प्रतिलभ्य कामम हिदलोकमाशु अपि अचिरेण धीरः। जिसके अंदर में कामना वासनाएं हैं, जो अकाम है, निष्काम है, जिनकी समस्त कामनाएं दूर हैं, जो आत्माराम है, कोई कामना नहीं, जो भी पुरुष है भक्त है, सब लोगों को यह आवश्यक है जो इन लीला कथाओं का जो भागवत में वर्णन किया गया है सुने और अनुवर्ण ये थे जब अनुमान निरंतर वर्णन करें इसी का, और कोई काम नहीं। तो उनका हृदय रोग पहले उनमें भक्ति आती है, और जब ही ये भक्ति साधन से भावावस्था में आएगी और भावावस्था में जब ही वो प्रवेश करने लगेगी, साथ ही साथ में क्लेश अग्नि
सुभदा
मोक्ष लब्धा कृत
सुदुर्लभा छंदानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण
कृष्ण को भी आकर्षण करने और समस्त उसके रोग दूर हो जाएंगे, कोई भी कष्ट नहीं होगा। पहला उसका उत्तम भक्ति का आचरण का पहला निशान यह है, चित्त सुप्रसन्न हो जाएगा। जो भजन करेंगे जरूर चित्त प्रसन्न होगा, भजन करते हैं और चित्त चंचल है, बहुत दुखी है, लोगों से डरते हैं, डरपोक हृदय है और बहुत चंचल है, घबरा जाते हैं,
मृत्यु से भी
नहीं ऐसा सुप्रसन्न रहते हैं। हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख जस अपजस कुछ नहीं समझते, बेकार का, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये तो होना ही है। ये तो गीता की पहली शिक्षा है, कख भ ये तो पहले ही दूर हो जाता है, भक्ति तो अनुष्ठान से पूर्व ही, अभी राग की जरूरत नहीं है, उसका आभास ही जान हुआ ना। जब भक्ति निष्ठा में आएगी तो अपने आप ये सब दूर हो जाएगा, अनर्थ तो सारे दूर हो जाएगा। इसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ेगा भावावस्था, फिर क्रमशः उसमें परिवार, तब अनुराग से हम उनका भजन कर सकते हैं। कोटि कोटि लोगों में से कोई एक भजन करने की इच्छा करता है, कोटि कोटि लोगों में से, और उन लोगों जो इच्छा करते हैं उनमें कोटि कोटि लोगों में से किसी एक को सच्चे प्रेमी भक्त, बस एक, सबको नहीं मिलते, और जिनको मिलते हैं उनमें दृढ़ निष्ठा के साथ में उनके चरित्र को अनुसरण करने की शक्ति आती है कोई बिरले को, और उन कोटि कोटि लोगों में से कोई एक नारायण का भजन करता है, लक्ष्मी नारायण, और ऐसे कोटि कोटि नारायण भक्तों में से एक कोई महाभाग्यवान सौभाग्यवान व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लगता है, और ऐसे कोटि कोटि साधकों में से कोई कोई एक बिरले मुक्त होता है, और ऐसे कोटि कोटि मुक्तों में से कोई एक आदमी कृष्ण की भक्ति में सिद्धि लाभ करता है। ऐसे कोटि कोटि सिद्धि लोगों में से भी ब्रज के उपासक बहुत बिरले हैं, ये समझो, और ऐसे कोटि कोटि उपासक बिरलों में से ब्रज का राधा जी की मैं दासी होंगी, ये तो बस समझो, इसलिए बाकी जितने हैं सब उनसे झगड़ने लगते हैं, देवता लोग भी उसे विरोध करने, जी हमको लांग करके जा रहा है, उसका विरोध करने लगते हैं। एक ऐसी दुर्लभ चीज है। मान देखिए आप लोगों में से किसी एक आदमी को, एक आदमी आया आप लोगों को देखते ही उसको कोई दुर्लभ चीज दे गया, दुर्लभ एक हीरे की जो करोड़ों रुपए की हो, जो कि विक्टोरिया घाट करती थी कहने में, वो दिया। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो अकेले चले तो इसको भी मार करके ले रहे, और कितने लोगों को ईर्ष्या होगी, कुछ होगा। ऐसे ये कृष्ण प्रेम ऐसा है, जब ये होता है ना तो अब दूसरे लोग देवता तक समझते नहीं, इसलिए वो विरोध करते हैं कभी कभी, और भक्तों को तो आदर होगा ही। ऐसी ये दुर्लभ चीज है, मैं आप सब लोगों को वहीं पर ले चलना चाहता हूँ, ऐसी दुर्लभ चीज देना चाहता हूँ। किंतु बहुत से लोग हैं इसको, इसका मर्म ही नहीं समझते, इसलिए जल्दी से जल्दी एक कौड़ी का मोह छोड़ करके एक चिंतामणि के लिए आइए हम लोग। चल संसार का ये सब जो ये मोह है ये कौड़ी का है, इसलिए इन सब चीजों को छोड़कर इसमें सुख शांति नहीं होगी। चाहे लाखों का लाखों आपको करोड़ों पति हो जाइए, चाहे अमेरिकन राष्ट्र जैसे वहां पर कॉन्फोर्ड एंड कंपनी और कौन कौन सब है, ऐसे सब हो जाए, सुख शांति नहीं मिलेगी। ये जितना होगा इतना दुखी दुख देने वाला। इसलिए इस बसंत ऋतु में, बसंत पंचमी या इस तिथि में हम लोग ये संकल्प लेकर के चलते, हमको बहुत जल्दी से जल्दी कृष्ण भक्ति करके हमको अग्रसर होना है। यही बसंत ऋतु का संदेश है। इसलिए हम लोग इन चीजों को अनुधावन करें और धीरे धीरे अग्रसर बढ़ें। है बड़ी दुर्लभ वस्तु किंतु मूल्य बहुत कम है इसका। अभी कलकत्ते में या कहीं दिल्ली में ही या कहां मैं गया था तो कोई ऐसा प्रसंग आया, एक आदमी कह रहा था जो हमारे घर में बहुत सुंदर मीठा आम हुआ और सोचा कि हमने इस मोहल्ले में मैं बांट दूं, इतना सुंदर मीठा, तो बंटवाने गया तो किसी ने लिया नहीं, और फिर उसी को मैंने जब कोई नहीं लिया तो हमने कहा इसे एक एक आम का दाम 10-10 रुपए है, तो झट जाते इससे वहां जाते जाते सब कुछ बिक गया। ऐसा भी है दुर्लभ वस्तु। इसी समय में गए। कल मैं बतला रहा था विष्णु प्रिया जी के आविर्भाव के तिथि में। विष्णु प्रिया जी वैकुंठ प्रेम की मूर्ति हैं। चैतन्य महाप्रभु सबको छोड़ करके संन्यास के लिए चले गए। कैसे चले गए? 2-3 दिन आगे पर्यंत प्रेम में डूबे रहते और कृष्ण हा कृष्ण करते रहते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी कुछ। यहाँ तक कि मैया ने सोचा कि इनको मृगी रोग हो गया, सब लोग कहने लगे। तो जिस दिन वो घर छोड़ेंगे उस दिन बड़े बन ठन करके अपना श्रृंगार किया। उनके केश कैसे थे? घुघराले, बहुत ही सुंदर किशोर मूर्ति। चाहे कृष्ण 50 वर्ष के हो जाएं, 60 वर्ष के हो जाएं, 80 वर्ष के हो जाएं, किंतु एक उनकी मूर्ति कैसे किशोर मूर्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु भी उस समय 24 वर्ष के थे किंतु मूर्ति कैसी थी? परम किशोर मूर्ति थी। केश बड़े घने घने काले गुच्छ और अलके घुघराले बाल। आज सुंदर वस्त्र पहन करके गांव में निकले, गांव वालों ने से सबसे मिले, एक एक आदमी से मिलते गए, यहाँ तक कि तो रूप धारण किया जिसे गांव वाले सभी लोगों से मिले। उस समय 22 बाजार नवद्वीप में थे, बहुत विराट शहर था नवद्वीप, सबसे मिले, मिल करके गले से लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। किसी ने उनको एक सिद्धर्थ जो थे उन्होंने एक लौकी फेंकी बड़ी सुंदर, और बालों के यहाँ गए तो उन लोगों ने दूध दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने शक्कर दिया, किसी ने कुछ दिया, ब्राह्मण तो थे ही। पहले सब लेकर के घर में आए, मैया को दिया, मैया ने रसोई बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। लगाने के बाद में वो प्रसाद लौकी की वो खीर बनी, खीर उसको कहते, उसको लकलकी कहते, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट। महाप्रभु जी ने आज खूब खाया और खाने के बाद में रात हो गई 8-9 बजे। अपनी पत्नी विष्णु प्रिया जी के हैं, घर गए। आज अभी कितने वर्ष हो गए विवाह के लिए, 2-3 वर्ष हो गए होंगे। कृष्ण प्रेम में सब समय मग्न रहते थे, इसलिए बोल पाए नहीं थे। आज पहला दिन हुआ, उसके कंधों पर अपना हाथ रख करके बड़े प्यार के साथ में पान की बुड़ी उसके मुख में दी और उनके उलझे हुए केशों को आज अपने हाथों से श्रृंगार किया। विष्णु प्रिया जी का श्रृंगार करके उनसे बड़ी मीठी मीठी बातें करने लग गए। वो सोचे ये क्या हो गया, ये अनहोनी कैसे हुई। जिस समय में दीप बुझने को होता है या लालटेन पहले थी, अब तो आप लोगों ने लालटेन भी शायद देखा।